مرد خدا مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل، مرکز پہلا باب۔ یسوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری کا شروع۔ جیسا یسعیاہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ
دیکھ، میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیار کرے گا۔ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔
یوحنا آیا اور بیابان میں بپتسمہ دیتا اور گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمے کی منادی کرتا تھا، اور یہودیہ کے ملک کے سب لوگ اور یروشلم کے سب رہنے والے نکل کر اس کے پاس گئے، اور انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن میں اس سے بپتسمہ لیا۔ اور یوحنا اونٹ کے بالوں کا لباس پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے رہتا، اور ٹڈیاں اور جنگلی شہد کھاتا تھا، اور یہ منادی کرتا تھا کہ
میرے بعد وہ شخص آنے والا ہے جو مجھ سے زوراور ہے، میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں۔ میں نے تو تم کو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر وہ تم کو روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔
اور ان دنوں ایسا ہوا کہ یسوع نے گلیل کے ناصرت سے آ کر یردن میں یوحنا سے بپتسمہ لیا، اور جب وہ پانی سے نکل کر اوپر آیا تو فل فور اس نے آسمان کو پھٹتے اور روح کو کبوتر کی مانند اپنے اوپر اترتے دیکھا، اور آسمان سے آواز آئی کہ
تو میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے میں خوش ہوں۔
اور فل فور روح نے اسے بیابان میں بھیج دیا، اور وہ بیابان میں 40 دن تک شیطان سے آزمایا گیا، اور جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا کیا، اور فرشتے اس کی خدمت کرتے رہے۔ پھر یوحنا کے پکڑوائے جانے کے بعد یسوع نے گلیل میں آ کر خدا کی خوشخبری کی منادی کی اور کہا کہ
وقت پورا ہو گیا ہے اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔
اور گلیل کی جھیل کے کنارے کنارے جاتے ہوئے اس نے شمعون اور شمعون کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا، کیونکہ وہ ماہی گیر تھے، اور یسوع نے ان سے کہا
میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدم گیر بناؤں گا۔
وہ فل فور جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے، اور تھوڑی دور بڑھ کر اس نے زبدی کے بیٹے یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو کشتی پر جالوں کی مرمت کرتے دیکھا۔ اس نے فل فور ان کو بلایا، اور وہ اپنے باپ زبدی کو کشتی پر مزدوروں کے ساتھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ پھر وہ کفرنہوم میں داخل ہوئے، اور وہ فل فور سبت کے دن عبادت خانے میں جا کر تعلیم دینے لگا، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے، کیونکہ وہ ان کو فقیہوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا۔ اور فل فور ان کے عبادت خانے میں ایک شخص ملا جس میں ناپاک روح تھی، وہ یوں کہہ کر چلایا کہ
اے یسوع ناصری، ہمیں تجھ سے کیا کام، کیا تو ہم کو ہلاک کرنے والا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، خدا کا قدوس ہے۔
یسوع نے اسے جھڑک کر کہا
چپ رہ اور اس میں سے نکل جا۔
پس وہ ناپاک روح اسے مروڑ کر اور بڑی آواز سے چلا کر اس میں سے نکل گئی، اور سب لوگ حیران ہوئے اور آپس میں یہ کہہ کر بحث کرنے لگے کہ
یہ کیا ہے، یہ تو نئی تعلیم ہے،
وہ ناپاک روحوں کو بھی اختیار کے ساتھ حکم دیتا ہے اور وہ اس کا حکم مانتی ہیں۔
اور فل فور اس کی شہرت گلیل کی اس تمام نواحی میں ہر جگہ پھیل گئی، اور وہ فل فور عبادت خانے سے نکل کر یعقوب اور یوحنا کے ساتھ شمعون اور اندریاس کے گھر آئے۔ شمعون کی ساس تپ میں پڑی تھی، اور انہوں نے فل فور اس کی خبر اسے دی۔ उसने पास जाकर और उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और तब उस पर से उतर गई और वो उनकी खिदमत करने लगी। शाम को जब सूरज डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उनको जिनमें बदरूहें थीं उसके पास लाए और सारा शहर दरवाजे पर जमा हो गया और उसने बहुतों को जो तरह तरह की बीमारियों में गिरफ्तार थे अच्छा किया और बहुत सी बदरूहों को निकाला और बदरूहों को बोलने न दिया क्योंकि वो उसे पहचानती थीं। और सुबह ही दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक वीरान जगह में गया और वहाँ दुआ की और शिमाउन और उसके साथी उसके पीछे गए और जब वो मिला तो उससे कहा कि
सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं।
उसने उनसे कहा
आओ हम और कहीं आसपास के शहरों में चलें ताकि मैं वहाँ भी मुनादी करूँ क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूँ।
और वो तमाम गलील में उनके इबादत खानों में जा जाकर मुनादी करता और बदरूहों को निकालता रहा। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा
अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है।
उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर उससे कहा
मैं चाहता हूँ तू पाक साफ हो जा।
और फिलफोर उसका कोढ़ जाता रहा और वो पाक साफ हो गया और उसने उसे ताकीद करके फिलफोर रुखसत किया और उससे कहा
खबरदार किसी से कुछ ना कहना मगर जाकर अपने तई काहिन को दिखा और अपने पाक साफ हो जाने की बाबत उन चीजों को जो मूसा ने मुकर्रर की नजर गुजरान ताकि उनके लिए गवाही हो।
लेकिन वो बाहर जाकर बहुत चर्चा करने लगा और इस बात को ऐसा मशहूर किया कि यस्सु शहर में फिर जाहिरन दाखिल ना हो सका बल्कि बाहर वीरान मकामों में रहा और लोग चारों तरफ से उसके पास आते थे। मरकस दूसरा बाब। कई दिन बाद जब वो कफरनहूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाजे के पास भी जगह ना रही और वो उनको कलाम सुना रहा था और लोग एक मफलूज को चार आदमियों से उठवा कर उसके पास लाए मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नज़दीक ना सके तो उन्होंने उस छत को जहां वो था खोल दिया और उसे उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। यसु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा
बेटा तेरे गुनाह मुआफ हुए।
मगर वहाँ बाज़ फकीर जो बैठे थे वो अपने दिलों में सोचने लगे कि
ये क्यों ऐसा कहता है कुफ्र बकता है खुदा के सिवा गुनाह कौन मुआफ कर सकता है।
और फिलफौर यसु ने अपनी रूह से मालूम करके कि वो अपने दिलों में यूं सोचते हैं उनसे कहा
तुम क्यों अपने दिलों में ये बातें सोचते हो आसान क्या है मफलूज से ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है।
उसने उस मफलूज से कहा
मैं तुझसे कहता हूँ उठ अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा।
और वो उठा और फिलफौर चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया। चुनाचे वो सब हैरान हो गए और खुदा की तमजीद करके कहने लगे
हमने ऐसा कभी नहीं देखा था।
वो फिर बाहर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई और वो उनको तालीम देने लगा। जब वो जा रहा था तो उसने हल्फई के बेटे लावी को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा
मेरे पीछे हो ले।
बस वो उठकर उसके पीछे हो लिया और यूं हुआ कि वो उसके घर में खाना खाने बैठा और बहुत से महसूल लेने वाले और गुनाहगार लोग यसु और उसके शागिर्दों के साथ खाने बैठे, क्योंकि वो बहुत थे और उसके पीछे हो लिए थे। और फरीसियों के फकीयों ने उसे गुनाहगारों और महसूल लेने वालों के साथ खाते देखकर उसके शागिर्दों से कहा,
ये तो महसूल लेने वालों और गुनाहगारों के साथ खाता पीता है।
यसु ने ये सुनकर उनसे कहा,
तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं बल्कि बीमारों को। मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूँ।
और यूहन्ना के शागिर्द और फरीसी रोजे से थे, उन्होंने आकर उससे कहा,
यूहन्ना के शागिर्द और फरीसियों के शागिर्द तो रोजा रखते हैं, लेकिन तेरे शागिर्द क्यों रोजा नहीं रखते?
यसु ने उनसे कहा,
क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है रोजा रख सकते हैं? जिस वक्त तक दूल्हा उनके साथ है वो रोजा नहीं रख सकते, मगर वो दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोजा रखेंगे। कोरे कपड़े का पैबंद पुरानी पोशाक पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वो पैबंद उस पोशाक में से कुछ खींच लेगा, यानी नया पुरानी से, और वो ज्यादा फट जाएगी। और नई मैं को पुरानी मशकों में कोई नहीं भरता, नहीं तो मशकें मैं से फट जाएंगी और मैं और मशकें दोनों बर्बाद हो जाएंगी, बल्कि नई मैं को नई मशकों में भरते हैं।
और यूं हुआ कि वो सब्बत के दिन खेतों में होकर जा रहा था और उसके शागिर्द राह में चलते हुए बालें तोड़ने लगे, और फरीसियों ने उससे कहा,
देख ये सब्बत के दिन वो काम क्यों करते हैं जो रवा नहीं।
उसने उनसे कहा,
क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि दाऊद ने क्या किया जब उसको और उसके साथियों को जरूरत हुई और वो भूखे हुए? वो क्यों करीब यात्र सरदार काहन के दिनों में खुदा के घर में गया और उसने नजर की रोटियां खाई, जिनको खाना काहनों के सिवा और किसी को रवा नहीं, और अपने साथियों को भी दी?
और उसने उनसे कहा,
सब्बत आदमी के लिए बना है, ना आदमी सब्बत के लिए, बस इब्न आदम सब्बत का भी मालिक है।
मरकस तीसरा बाब। और वो इबादत खाने में फिर दाखिल हुआ और वहां एक आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ था, और वो उसकी ताक में रहे कि अगर वो उसे सब्बत के दिन अच्छा करे तो उस पर इल्जाम लगाएं। उसने उस आदमी से जिसका हाथ सूखा हुआ था कहा,
बीच में खड़ा हो,
और उनसे कहा,
सब्बत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना, जान बचाना या कत्ल करना?
वो चुप रह गए। उसने उनकी सख्त दिली के सबब से गमगीन होकर और चारों तरफ उन पर गुस्से से नजर करके उस आदमी से कहा,
अपना हाथ बढ़ा।
उसने बढ़ा दिया और उसका हाथ दुरुस्त हो गया। फिर फरीसी फिलफोर बाहर जाकर हेरोदियों के साथ उसके बरखिलाफ मशवरा करने लगे कि उसे किस तरह हलाक करें। और यसु अपने शागिर्दों के साथ झील की तरफ चला गया और गलील से एक बड़ी भीड़ पीछे हो ली, और यहूदिया और यरूशलेम और इदूमिया से और यर्दन के पार और सूर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ ये सुनकर कि वो कैसे बड़े काम करता है उसके पास आई। बस उसने अपने शागिर्दों से कहा, भीड़ की वजह से एक छोटी कश्ती मेरे लिए तैयार रहे ताकि वो मुझे दबा न डालें, क्योंकि उसने बहुत लोगों को अच्छा किया था। चुनाचे जितने लोग सख्त बीमारियों में गिरफ्तार थे उस पर गिरे पड़ते थे कि उसे छू लें, और नापाक रूहें जब उसे देखती थीं उसके आगे गिर पड़ती और पुकार कर कहती थीं कि
तू खुदा का बेटा है,
और वो उनको बड़ी ताकीद करता था कि मुझे जाहिर ना करना। फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया और जिनको वो आप चाहता था उनको पास बुलाया और वो उसके पास चले आए, और उसने 12 को मुकरर किया ताकि उसके साथ रहें, और वो उनको भेजे के मुनादी करें और बदरुहों को निकालने का इख्तियार रखें। वो ये हैं: शिमाउन जिसका नाम पतरस रखा, और जब्दी का बेटा याकूब, और याकूब का भाई योहन्ना जिनका नाम बुआ निर्गिस यानी गरज के बेटे रखा, और इंद्रियास और फिलिप्पुस और बुर्तुलमाई और मत्ती और तूमा और हल्फई का बेटा याकूब और तद्दई और शिमाउन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया, वो घर में आया। और इतने लोग फिर जमा हो गए कि वो खाना भी ना खा सके। जब उसके अजीजों ने ये सुना तो उसे पकड़ने को निकले, क्योंकि कहते थे कि
वो बेखुद है।
और फकीह जो यरूशलेम से आए थे ये कहते थे कि
उसके साथ बाल जबूल है,
और ये भी कि
वो बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है।
वो उनको पास बुलाकर उनसे तमसीलों में कहने लगा कि
शैतान को शैतान किस तरह निकाल सकता है, और अगर किसी सल्तनत में फूट पड़ जाए तो वो सल्तनत कायम नहीं रह सकती, और अगर किसी घर में फूट पड़ जाए तो वो घर कायम ना रह सकेगा, और अगर शैतान अपना ही मुखालिफ होकर अपने में फूट डाले तो वो कायम नहीं रह सकता बल्कि उसका खात्मा हो जाएगा। लेकिन कोई आदमी किसी जोरावर के घर में घुसकर उसके असबाब को लूट नहीं सकता जब तक वो पहले उस जोरावर को ना बांध ले, तब उसका घर लूट लेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि बनी आदम के सब गुनाह और जितना कुफ्र वो बकते हैं मुआफ किया जाएगा, लेकिन जो कोई रूह कुद्स के हक में कुफ्र बके वो अबद तक मुआफी ना पाएगा, बल्कि अबदी गुनाह का कसूरवार है।
क्योंकि वो कहते थे कि
उसमें नापाक रूह है।
फिर उसकी माँ और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा, और भीड़ उसके आसपास बैठी थी, और उन्होंने उससे कहा,
देख तेरी माँ और तेरे भाई बाहर तुझे पूछते हैं।
उसने उनको ये जवाब दिया,
मेरी माँ और मेरे भाई कौन हैं?
और उन पर जो उसके गिर्द बैठे थे नजर करके कहा,
देखो मेरी माँ और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई खुदा की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और माँ है।
मरकस 4 बाब। वो फिर झील के किनारे तालीम देने लगा, और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि वो झील में एक कश्ती में जा बैठा, और सारी भीड़ खुश्की पर झील के किनारे रही, और वो उनको तमसीलों में बहुत सी बातें सिखाने लगा, और अपनी तालीम में उनसे कहा,
सुनो देखो एक बोने वाला बीज बोने निकला, और बोते वक्त यूं हुआ कि कुछ राह के किनारे गिरा और परिंदों ने आकर उसे चुग लिया, और कुछ पथरीली जमीन पर गिरा जहां उसे बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उगाया, और जब सूरज निकला तो जल गया, और जड़ ना होने के सबब से सूख गया, और कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वो फल ना लाया, और कुछ अच्छी जमीन पर गिरा और वो उगा और बढ़कर फला, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाया।
फिर उसने कहा,
जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले।
जब वो अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इन तमसीलों की बाबत पूछा। उसने उनसे कहा कि
तुमको खुदा की बादशाही का भेद दिया गया है, मगर उनके लिए जो बाहर हैं सब बातें तमसीलों में होती हैं, ताकि वो देखते हुए देखें और मालूम ना करें, और सुनते हुए सुने और ना समझें, ऐसा ना हो कि वो रुजू लाएं और मुआफी पाएं।
फिर उसने उनसे कहा,
क्या तुम ये तमसील नहीं समझे? फिर सब तमसीलों को क्यों कर समझोगे? बोने वाला कलाम बोता है। जो राह के किनारे हैं, जहां कलाम बोया जाता है, ये वो हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान फिलफौर आकर उस कलाम को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। और इसी तरह जो पथरीली जमीन में बोए गए, ये वो हैं जो कलाम को सुनकर फिलफौर खुशी से कबूल कर लेते हैं और अपने अंदर जड़ नहीं रखते, बल्कि चंद रोजा हैं। फिर जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बरपा होता है तो फिलफौर ठोकर खाते हैं। और जो झाड़ियों में बोए गए वो और हैं, ये वो हैं जिन्होंने कलाम सुना और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब और चीजों का लालच दाखिल होकर कलाम को दबा देते हैं और वो बेफल रह जाता है। और जो अच्छी जमीन में बोए गए ये वो हैं जो कलाम को सुनते और कबूल करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना।
और उसने उनसे कहा,
क्या चिराग इसलिए लाते हैं कि पैमाने या पलंग के नीचे रखा जाए? क्या इसलिए नहीं कि चिरागदान पर रखा जाए? क्योंकि कोई चीज छुपी नहीं मगर इसलिए कि जाहिर हो जाए, और पोशीदा नहीं हुई मगर इसलिए कि जहूर में आए। अगर किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले।
फिर उसने उनसे कहा,
खबरदार रहो कि क्या सुनते हो। जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा और तुमको ज्यादा दिया जाएगा। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा।
और उसने कहा,
खुदा की बादशाही ऐसी है जैसे कोई आदमी जमीन में बीज डाले और रात को सोए और दिन को जागे और वो बीज इस तरह उगे और बढ़े कि वो ना जाने। जमीन आप से आप फल लाती है, पहले पत्ती, फिर बालें, फिर बालों में तैयार दाने, फिर जब अनाज पक चुका तो वो फिलफौर दरांती लगाता है क्योंकि काटने का वक्त आ पहुंचा।
फिर उसने कहा कि
हम खुदा की बादशाही को किससे तशबी दें और किस तमसील में उसे बयान करें? वो राई के दाने की मानिंद है कि जब जमीन में बोया जाता है तो जमीन के सब बीजों से छोटा होता है, मगर जब बो दिया गया तो उग कर सब तरकारियों से बड़ा हो जाता है और ऐसी बड़ी डालियां निकालता है कि हवा के परिंदे उसके साए में बसेरा कर सकते हैं।
और वो उनको इस किस्म की बहुत सी तमसीलें दे देकर उनकी समझ के मुताबिक कलाम सुनाता था और बेतमसील उनसे कुछ ना कहता था, लेकिन खलवत में अपने खास शागिर्दों से सब बातों के मानी बयान करता था। उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा,
आओ पार चलें।
और वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था कश्ती पर साथ ले चले और उसके साथ और कश्तियां भी थीं। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहां तक आईं कि कश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगाकर कहा,
ए उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं?
उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा,
साकित हो, थम जा।
बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। फिर उनसे कहा,
तुम क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते?
और वो निहायत डर गए और आपस में कहने लगे,
ये कौन है कि हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं?
मरकस 5वां बाब। और वो झील के पार ग्रासिनियों के इलाके में पहुंचे और जब वो कश्ती से उतरा तो फिलफौर एक आदमी जिसमें नापाक रूह थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और अब कोई उसे जंजीरों से भी ना बांध सकता था क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था, लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ा और बेड़ियों को ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا اور کوئی اسے قابو میں نہ لا سکتا تھا، اور وہ ہمیشہ رات دن قبروں اور پہاڑوں میں چلاتا اور اپنے تئیں پتھروں سے زخمی کرتا تھا۔ وہ یسوع کو دور سے دیکھ کر دوڑا اور اسے سجدہ کیا اور بڑی آواز سے چلا کر کہا،
اے یسوع خدا تعالیٰ کے فرزند، مجھے تجھ سے کیا کہوں؟ تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں، مجھے عذاب میں نہ ڈال۔
کیونکہ اس نے اس سے کہا تھا،
اے ناپاک روح اس آدمی میں سے نکلا۔
پھر اس نے اس سے پوچھا،
تیرا نام کیا ہے؟
اس نے اس سے کہا،
میرا نام لشکر ہے، کیونکہ ہم بہت ہیں۔
پھر اس نے اس کی بہت منت کی کہ ہمیں اس علاقے سے باہر نہ بھیج، اور وہاں پہاڑ پر سوروں کا ایک بڑا غول چر رہا تھا۔ بس انہوں نے اس کی منت کر کے کہا کہ
ہم کو سوروں میں بھیج دے تاکہ ہم ان میں داخل ہوں۔
بس اس نے ان کو اجازت دی اور ناپاک روحیں نکل کر سوروں میں داخل ہو گئیں، اور وہ غول جو کوئی 2000 کا تھا کنارے پر سے جھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور جھیل میں ڈوب مرا، اور ان کے چرانے والوں نے بھاگ کر شہر اور دیہات میں خبر پہنچائی۔ پس لوگ یہ ماجرا دیکھنے کو نکل کر یسوع کے پاس آئے، اور جس میں بدروہیں یعنی بدروہوں کا لشکر تھا اس کو بیٹھے اور کپڑے پہنے اور ہوش میں دیکھ کر ڈر گئے، اور دیکھنے والوں نے اس کا حال جس میں بدروہیں تھیں اور سوروں کا ماجرا ان سے بیان کیا۔ وہ اس کی منت کرنے لگے کہ ہماری سرحد سے چلا جا، اور جب وہ کشتی میں داخل ہونے لگا تو جس میں بدروہیں تھی اس نے اس کی منت کی کہ میں تیرے ساتھ رہوں، لیکن اس نے اسے اجازت نہ دی بلکہ اس سے کہا کہ
اپنے لوگوں کے پاس اپنے گھر جا اور ان کو خبر دے کہ خداوند نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے اور تجھ پر رحم کیا۔
وہ گیا اور دیکاپلس میں اس بات کا چرچا کرنے لگا کہ یسوع نے اس کے لیے کیسے بڑے کام کیے، اور سب لوگ تعجب کرتے تھے۔ جب یسوع پھر کشتی میں پار گیا تو بڑی بھیڑ اس کے پاس جمع ہوئی، اور وہ جھیل کے کنارے تھا، اور عبادت خانے کے سرداروں میں سے ایک شخص یائر نام آیا اور اسے دیکھ کر اس کے قدموں پر گرا اور یہ کہہ کر اس کی بہت منت کی کہ
میری چھوٹی بیٹی مرنے کو ہے، تو آ کر اپنے ہاتھ اس پر رکھ تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے۔
پس وہ اس کے ساتھ چلا اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو لیے اور اس پر گرے پڑتے تھے۔ پھر ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی، یسوع کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ
اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی۔
اور فوراً اس کا خون بہنا بند ہو گیا، اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں نے اس بیماری سے شفا پائی۔ یسوع نے فوراً اپنے میں معلوم کر کے کہ مجھ میں سے قوت نکلی اس بھیڑ میں پیچھے مڑ کر کہا،
کس نے میری پوشاک چھوئی؟
اس کے شاگردوں نے اس سے کہا،
تو دیکھتا ہے کہ بھیڑ تجھ پر گیری پڑتی ہے، پھر تو کہتا ہے مجھے کس نے چھوا؟
اس نے چاروں طرف نگاہ کی تاکہ جس نے یہ کام کیا تھا اسے دیکھے۔ وہ عورت جو کچھ اس سے ہوا تھا محسوس کر کے ڈرتی اور کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر پڑی اور سارا حال سچ سچ اس سے کہہ دیا۔ اس نے اس سے کہا،
بیٹی تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی، सलामत जा और अपनी इस बीमारी से बची रह।
वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाने के सरदार के हाथ से लोगों ने आकर कहा कि
तेरी बेटी मर गई, अब उस्ताद को क्यों तकलीफ देता है।
जो बात वो कह रहे थे उस पर यस्सु ने तवज्जो ना करके इबादत खाने के सरदार से कहा,
खौफ ना कर, फक्त एतकाद रख।
फिर उसने पतरस और याकूब के भाई योहन्ना के सिवा और किसी को अपने साथ चलने की इजाजत ना दी और वो इबादत खाने के सरदार के घर में आए और उसने देखा कि हुल्लड़ हो रहा है और लोग बहुत रो पीट रहे हैं और अंदर जाकर उनसे कहा,
तुम क्यों गुल मचाते और रोते हो, लड़की मर नहीं गई बल्कि सोती है।
वो उस पर हंसने लगे लेकिन वो सबको निकाल कर लड़की के माँ बाप को और अपने साथियों को लेकर जहाँ लड़की पड़ी थी अंदर गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा,
तलीता कूमी,
जिसका तर्जुमा है,
ऐ लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ।
वो लड़की फिलफौर उठकर चलने फिरने लगी क्योंकि वो 12 बरस की थी। इस पर लोग बहुत ही हैरान हुए। फिर उसने उनको ताकीद से हुक्म दिया कि ये कोई ना जाने और फरमाया कि लड़की को कुछ खाने को दिया जाए। मरकस 6 बाब। फिर वहां से निकलकर वो अपने वतन में आया और उसके शागिर्द उसके पीछे हो लिए। जब सब्बत का दिन आया तो वो इबादत खाने में तालीम देने लगा और बहुत लोग सुनकर हैरान हुए और कहने लगे कि
ये बातें इसमें कहां से आ गईं और ये क्या हिकमत है जो इसे बख्शी गई और कैसे मौजज़े उसके हाथ से जाहिर होते हैं। क्या ये वही बढ़ई नहीं जो मरियम का बेटा और याकूब और यूसुफ और यहूदा और शिमाउन का भाई है?
और क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे यहाँ नहीं?
बस उन्होंने उसके सबब से ठोकर खाई। यसु ने उनसे कहा,
नबी अपने वतन और अपने रिश्तेदारों और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता।
और वो कोई मौजजा वहां ना दिखा सका, सिर्फ थोड़े से बीमारों पर हाथ रख कर उन्हें अच्छा कर दिया और उसने उनकी बेएतकादी पर ताजुब किया और वो चारों तरफ के गांव में तालीम देता फिरा। और उसने उन 12 को अपने पास बुलाकर 2-2 करके भेजना शुरू किया और उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा और हुक्म दिया कि रास्ते के लिए लाठी के सिवा कुछ ना लो, ना रोटी ना झोली ना अपने कमरबंद में पैसे, मगर जूतियां पहनो और 2 कुर्ते ना पहनो। और उसने उनसे कहा,
जहां तुम किसी घर में दाखिल हो तो उसी में रहो जब तक वहां से रवाना ना हो और जिस जगह के लोग तुमको कबूल ना करें और तुम्हारी ना सुने वहां से चलते वक्त अपने तलवों की गर्द झाड़ दो ताकि उन पर गवाही हो।
और उन्होंने रवाना होकर मुनादी की कि तौबा करो और बहुत सी बदरूहों को निकाला और बहुत से बीमारों को तेल मलकर अच्छा किया। और हेरोदिस बादशाह ने उसका जिक्र सुना क्योंकि उसका नाम मशहूर हो गया था और उसने कहा कि
योहन्ना बपतिस्मा देने वाला मुर्दों में से जी उठा है क्योंकि उससे मौजज़े जाहिर होते हैं।
मगर बाज कहते थे कि
एलिया है
और बाज ये कि
नबियों में से किसी की मानिंद एक नबी है।
मगर हेरोदीस ने सुनकर कहा कि
योहन्ना जिसका सर मैंने कटवाया वही जी उठा है,
क्योंकि हेरोदीस ने आप आदमी भेजकर योहन्ना को पकड़वाया और अपने भाई फिलिप्पुस की बीवी हेरोदियास के सबब से उसे कैद खाने में बांध रखा था क्योंकि हेरोदीस ने उससे ब्याह कर लिया था। और योहन्ना ने उससे कहा था कि
अपने भाई की बीवी को रखना तुझे रवा नहीं।
बस हेरोदियास उससे दुश्मनी रखती और चाहती थी कि उसे कत्ल कराए मगर ना हो सका क्योंकि हेरोदीस योहन्ना को रास्तबाज اور مقدس آدمی جان کر اس سے ڈرتا اور اسے بچائے رکھتا تھا، اور اس کی باتیں سن کر بہت حیران ہو جاتا تھا، مگر سنتا خوشی سے تھا۔ اور موقع کے دن جب ہیرودیس نے اپنی سالگرہ میں اپنے امیروں اور فوجی سرداروں اور گلیل کے رئیسوں کی ضیافت کی، اور اسی ہیرودیاس کی بیٹی اندر آئی اور ناچ کر ہیرودیس اور اس کے مہمانوں کو خوش کیا، تو بادشاہ نے اس لڑکی سے کہا،
جو چاہے مجھ سے مانگ، میں تجھے دوں گا،
اور اس سے قسم کھائی کہ
جو تو مجھ سے مانگے گی اپنی آدھی سلطنت تک تجھے دوں گا۔
اور اس نے باہر جا کر اپنی ماں سے کہا کہ
میں کیا مانگوں؟
اس نے کہا،
یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر۔
وہ فلفور بادشاہ کے پاس جلدی سے اندر آئی اور اس سے عرض کی،
میں چاہتی ہوں کہ تو یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر ایک تھال میں ابھی مجھے منگوا دے۔
بادشاہ بہت غمگین ہوا، مگر اپنی قسموں اور مہمانوں کے سبب سے اس سے انکار کرنا نہ چاہا۔ پس بادشاہ نے فلفور ایک سپاہی کو حکم دے کر بھیجا کہ اس کا سر لائے۔ اس نے جا کر قید خانے میں اس کا سر کاٹا اور ایک تھال میں لا کر لڑکی کو دیا، اور لڑکی نے اپنی ماں کو دیا۔ پھر اس کے شاگرد سن کر آئے اور اس کی لاش اٹھا کر قبر میں رکھی، اور رسول یسوع کے پاس جمع ہوئے، اور جو کچھ انہوں نے کیا اور سکھایا تھا سب اس سے بیان کیا۔ اس نے ان سے کہا،
تم آپ الگ ویران جگہ میں چلے آؤ اور ذرا آرام کرو۔
اس لیے کہ بہت لوگ آتے جاتے تھے اور ان کو کھانا کھانے کی بھی فرصت نہ ملتی تھی۔ پس وہ کشتی میں بیٹھ کر الگ ایک ویران جگہ میں چلے گئے، اور لوگوں نے ان کو جاتے دیکھا اور بہتیروں نے پہچان لیا، اور سب شہروں سے اکٹھے ہو کر پیدل ادھر دوڑے اور ان سے پہلے جا پہنچے۔ اور اس نے اتر کر بڑی بھیڑ دیکھی اور اسے ان پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند تھے جن کا چرواہا نہ ہو، اور وہ ان کو بہت سی باتوں کی تعلیم دینے لگا۔ جب دن بہت ڈھل گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آ کر کہنے لگے،
یہ جگہ ویران ہے اور دن بہت ڈھل گیا ہے، ان کو رخصت کر تاکہ چاروں طرف کی بستیوں اور گاؤں میں جا کر اپنے لیے کچھ کھانے کو مول لیں۔
اس نے ان سے جواب میں کہا،
تم ہی انہیں کھانے کو دو۔
انہوں نے اس سے کہا،
کیا ہم جا کر 200 دینار کی روٹیاں مول لائیں اور ان کو کھلائیں؟
اس نے ان سے کہا،
تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں؟ جاؤ دیکھو۔
انہوں نے دریافت کر کے کہا،
5 اور 2 مچھلیاں۔
اس نے ان کو حکم دیا کہ سب ہری گھاس پر دستہ دستہ ہو کر بیٹھ جائیں۔ پس وہ 100 100 اور 50 50 کی قطاریں باندھ کر بیٹھ گئے۔ پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی، اور روٹیاں توڑ کر شاگردوں کو دیتا گیا کہ ان کے آگے رکھیں، اور وہ 2 مچھلیاں بھی ان سب میں بانٹ دیں۔ پس وہ سب کھا کر سیر ہو گئے، اور انہوں نے ٹکڑوں اور مچھلیوں سے 12 ٹوکریاں بھر کر اٹھائیں، اور کھانے والے 5000 مرد تھے۔ اور فلفور اس نے اپنے شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی پر بیٹھ کر اس سے پہلے اس پار بیتسیدا کو چلے جائیں جب تک وہ لوگوں کو رخصت کرے، اور ان کو رخصت کر کے پہاڑ پر دعا کرنے چلا گیا۔ اور جب شام ہوئی تو کشتی جھیل کے بیچ میں تھی اور وہ اکیلا خشکی پر تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ کھینے سے بہت تنگ ہیں کیونکہ ہوا ان کے مخالف تھی، تو رات کے پچھلے پہر کے قریب وہ جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا اور ان سے آگے نکل جانا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے اسے جھیل پر چلتے دیکھ کر خیال کیا کہ بھوت ہے اور چلا اٹھے، کیونکہ سب اسے دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔ مگر اس نے فلفور ان سے باتیں کی और कहा,
खातिर जमा रखो, मैं हूँ, डरो मत।
फिर वो कश्ती पर उनके पास आया और हवा थम गई और वो अपने दिल में निहायत हैरान हुए, इसलिए कि वो रोटियों के बारे में ना समझे थे, बल्कि उनके दिल सख्त हो गए थे। और वो पार जाकर गनेसरत के इलाके में पहुँचे और कश्ती घाट पर लगाई, और जब कश्ती पर से उतरे तो फिलफोर लोग उसे पहचान कर उस सारे इलाके में चारों तरफ दौड़े और बीमारों को चारपाइयों पर डालकर जहाँ कहीं सुना कि वो है वहाँ लिए फिरे, और वो गांव, शहरों और बस्तियों में जहाँ कहीं जाता था लोग बीमारों को बाजारों में रख कर उसकी मिन्नत करते थे कि वो सिर्फ उसकी पोशाक का किनारा छू लें, और जितने उसे छूते थे शिफा पाते थे। मरकस सातवां बाब। फिर फरीसी और बाज़ फकीह उसके पास जमा हुए। वो यरूशलेम से आए थे और उन्होंने देखा कि उसके बाज़ शागिर्द नापाक यानी बिन धोए हाथों से खाना खाते हैं, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी बुजुर्गों की रवायत के मुताबिक जब तक अपने हाथ खूब धो न लें नहीं खाते, और बाजार से आकर जब तक गुसल न कर लें नहीं खाते, और बहुत सी और बातों के जो उनको पहुंची हैं पाबंद हैं, जैसे प्यालों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना। पस फरीसियों और फकीहों ने उससे पूछा, क्या सबब है कि
तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायत पर नहीं चलते बल्कि नापाक हाथों से खाना खाते हैं?
उसने उनसे कहा,
यसाया ने तुम रियाकारों के हक में क्या खूब नबूवत की, जैसा कि लिखा है, ये लोग होंठों से तो मेरी ताजीम करते हैं लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं, और ये बेफायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। तुम खुदा के हुक्म को तर्क करके आदमियों की रिवायत को कायम रखते हो।
और उसने उनसे कहा,
तुम अपनी रिवायत को मानने के लिए खुदा के हुक्म को बिल्कुल रद्द कर देते हो, क्योंकि मूसा ने फरमाया है कि अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत कर, और जो कोई बाप या माँ को बुरा कहे वो जरूर जान से मारा जाए। लेकिन तुम कहते हो, अगर कोई बाप या माँ से कहे कि जिस चीज का तुझे मुझसे फायदा पहुंच सकता था वो कुर्बान यानी खुदा की नजर हो चुकी, तो तुम उसे फिर बाप या माँ की कुछ मदद करने नहीं देते। यूं तुम खुदा के कलाम को अपनी रवायत से जो तुमने जारी की है बातिल कर देते हो, और ऐसे बहुतेरे काम करते हो।
और वो लोगों को फिर पास बुलाकर उनसे कहने लगा,
तुम सब मेरी सुनो और समझो, कोई चीज बाहर से आदमी में दाखिल होकर उसे नापाक नहीं कर सकती, मगर जो चीजें आदमी में से निकलती हैं वही उसको नापाक करती हैं। अगर किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले।
और जब वो भीड़ के पास से घर में गया तो उसके शागिर्दों ने उससे इस तमसील के मानी पूछे। उसने उनसे कहा,
क्या तुम भी ऐसे बेसमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि कोई चीज जो बाहर से आदमी के अंदर जाती है उसे नापाक नहीं कर सकती, इसलिए कि वो उसके दिल में नहीं बल्कि पेट में जाती है और मजबले में निकल जाती है?
ये कहकर उसने तमाम खाने की चीजों को पाक ठहराया। फिर उसने कहा,
जो कुछ आदमी में से निकलता है वही उसको नापाक करता है, क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं, हरामकारियां, चोरियां, खून रेजियां, जिनाकारियां, लालच, बदियां, मकर, शहवत परस्ती, बदनजरी, बदगोई, शेखी, बेवकूफी, ये सब बुरी बातें अंदर से निकलकर आदमी को नापाक करती हैं।
फिर वहां से उठकर सूर और सैदा की सरहदों में गया और एक घर में दाखिल हुआ। اور نہ چاہتا تھا کہ کوئی جانے، مگر پوشیدہ نہ رہ سکا۔ بلکہ فلفور ایک عورت جس کی چھوٹی بیٹی میں ناپاک روح تھی، اس کی خبر سن کر آئی اور اس کے قدموں پر گری۔ یہ عورت یونانی تھی اور قوم کی سور فنیکی۔ اس نے اس سے درخواست کی کہ بدرو کو اس کی بیٹی میں سے نکالے۔ اس نے اس سے کہا،
پہلے لڑکوں کو سیر ہونے دے، کیونکہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں۔
اس نے جواب میں کہا،
ہاں خداوند، کتے بھی میز کے تلے لڑکوں کی روٹی کے ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں۔
اس نے اس سے کہا،
اس کلام کی خاطر جا، بدرو تیری بیٹی سے نکل گئی ہے۔
اور اس نے اپنے گھر میں جا کر دیکھا کہ لڑکی پلنگ پر پڑی ہے اور بدرو نکل گئی ہے۔ اور وہ پھر سور کی سرحدوں سے نکل کر سیدا کی راہ سے دیکاپلس کی سرحدوں سے ہوتا ہوا گلیل کی جھیل پر پہنچا، اور لوگوں نے ایک بہرے کو جو ہکلا بھی تھا اس کے پاس لا کر اس کی منت کی کہ اپنا ہاتھ اس پر رکھ۔ وہ اس کو بھیڑ میں سے الگ لے گیا اور اپنی انگلیاں اس کے کانوں میں ڈالیں اور تھوک کر اس کی زبان چھوئی، اور آسمان کی طرف نظر کر کے ایک آہ بھری اور اس سے کہا،
افتح،
یعنی
کھل جا۔
اور اس کے کان کھل گئے اور اس کی زبان کی گرا کھل گئی اور وہ صاف بولنے لگا۔ اور اس نے ان کو حکم دیا کہ کسی سے نہ کہنا، لیکن جتنا وہ ان کو حکم دیتا رہا اتنا ہی زیادہ وہ چرچا کرتے رہے۔ اور انہوں نے نہایت ہی حیران ہو کر کہا،
جو کچھ اس نے کیا سب اچھا کیا، وہ بہروں کو سننے کی اور گونگوں کو بولنے کی طاقت دیتا ہے۔
مرکز آٹھواں باب۔ ان دنوں میں جب پھر بڑی بھیڑ جمع ہوئی اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہ تھا، تو اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان سے کہا،
مجھے اس بھیڑ پر ترس آتا ہے، کیونکہ یہ 3 دن سے برابر میرے ساتھ رہی ہے اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں۔ اگر میں ان کو بھوکا گھر کو رخصت کروں تو راہ میں تھک کر رہ جائیں گے، اور بعض ان میں سے دور کے ہیں۔
اس کے شاگردوں نے اسے جواب دیا کہ،
اس بیابان میں کہاں سے کوئی اتنی روٹیاں لائے کہ ان کو سیر کر سکے؟
اس نے ان سے پوچھا،
تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں؟
انہوں نے کہا،
7۔
پھر اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ زمین پر بیٹھ جائیں، اور اس نے وہ 7 روٹیاں لیں اور شکر کر کے توڑیں اور اپنے شاگردوں کو دیتا گیا کہ ان کی آگے رکھیں، اور انہوں نے لوگوں کے آگے رکھ دیں۔ اور ان کے پاس تھوڑی سی چھوٹی مچھلیاں تھیں، اس نے ان پر برکت دے کر کہا کہ یہ بھی ان کے آگے رکھ دو۔ پس وہ کھا کر سیر ہوئے اور بچے ہوئے ٹکڑوں کے 7 ٹوکرے اٹھائے، اور لوگ 4,000 کے قریب تھے۔ پھر اس نے ان کو رخصت کیا، اور وہ فلفور اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی میں بیٹھ کر دلمنوتا کے علاقے میں گیا۔ پھر فریسی نکل کر اس سے بحث کرنے لگے اور اسے آزمانے کے لیے اس سے کوئی آسمانی نشان طلب کیا۔ اس نے اپنی روح میں آہ کھینچ کر کہا،
اس زمانے کے لوگ کیوں نشان طلب کرتے ہیں؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس زمانے کے لوگوں کو کوئی نشان دیا نہ جائے گا۔
اور وہ ان کو چھوڑ کر پھر کشتی میں بیٹھا اور پار چلا گیا، اور وہ روٹی لینا بھول گئے تھے، اور کشتی میں ان کے پاس 1 سے زیادہ روٹی نہ تھی۔ اور اس نے ان کو یہ حکم دیا کہ،
خبردار، فریسیوں کے خمیر اور ہیرودیس کے خمیر سے ہوشیار رہنا۔
وہ آپس میں چرچا کرنے اور کہنے لگے کہ،
ہمارے پاس روٹی نہیں۔
مگر یسو نے یہ معلوم کر کے ان سے کہا،
تم کیوں یہ چرچا کرتے ہو کہ ہمارے پاس روٹی نہیں؟ کیا اب تک نہیں جانتے اور نہیں سمجھتے؟ کیا تمہارا دل سخت ہو گیا ہے؟ آنکھیں ہیں اور تم دیکھتے نہیں، کان ہیں اور سنتے نہیں، اور کیا تم کو یاد نہیں جس وقت میں نے وہ 5 روٹیاں 5,000 کے لیے توڑی، तो तुमने कितनी टोकरियां टुकड़ों से भरी हुई उठाई?
उन्होंने उससे कहा,
12।
और जिस वक्त 7 रोटियां 4000 के लिए तोड़ी तो तुमने कितने टोकरे टुकड़ों से भरे हुए उठाए?
उन्होंने उससे कहा,
7।
उसने उनसे कहा,
क्या तुम अब तक नहीं समझते?
फिर वो बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उसकी मिन्नत की कि उसे छुए। वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर अपने हाथ उस पर रखे और उससे पूछा,
क्या तू कुछ देखता है?
उसने नजर उठाकर कहा,
मैं आदमियों को देखता हूँ क्योंकि वो मुझे चलते हुए ऐसे दिखाई देते हैं जैसे दरख्त।
फिर उसने दोबारा उसकी आंखों पर अपने हाथ रखे और उसने गौर से नजर की और अच्छा हो गया और सब चीजें साफ साफ देखने लगा। फिर उसने उसको उसके घर की तरफ रवाना किया और कहा कि
इस गांव के अंदर कदम भी न रखना।
फिर यसु और उसके शागिर्द कैसरिया फिलिपी के गांव में चले गए और राह में उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि
लोग मुझे क्या कहते हैं?
उन्होंने जवाब दिया कि
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और बाज एलिया
और बाज नबियों में से कोई।
उसने उनसे पूछा,
लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो?
पतरस ने जवाब में उससे कहा,
तू मसीह है।
फिर उसने उनको ताकीद की कि मेरी बाबत किसी से ये न कहना। फिर वो उनको तालीम देने लगा कि जरूर है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाए और बुजुर्ग और सरदार काहिन और फकीह उसे रद्द करें और वो कत्ल किया जाए और 3 दिन के बाद जी उठे। और उसने ये बात साफ साफ कही। पतरस उसे अलग ले जाकर उसे मलामत करने लगा, मगर उसने मुड़कर अपने शागिर्दों पर निगाह करके पतरस को मलामत की और कहा,
ऐ शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है।
फिर उसने भीड़ को अपने शागिर्दों समेत पास बुलाकर उनसे कहा,
अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी और इंजील की खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। और आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा? और आदमी अपनी जान के बदले क्या दे? क्योंकि जो कोई इस जिनाकार और खताकार कौम में मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा, इब्ने आदम भी जब अपने बाप के जलाल में पाक फरिश्तों के साथ आएगा तो उससे शर्माएगा।
मरकस नवा बाब। और उसने उनसे कहा,
मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहां खड़े हैं उनमें से बाज ऐसे हैं कि जब तक खुदा की बादशाही को कुदरत के साथ आया हुआ ना देख लें, मौत का मजा हरगिज ना चखेंगे।
6 दिन के बाद यसु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को हमरा लिया और उनको अलग एक ऊंचे पहाड़ पर तन्हाई में ले गया और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसकी पोशाक ऐसी नूरानी और नहायत सफ़ेद हो गई कि दुनिया में कोई धोबी वैसी सफ़ेद नहीं कर सकता। और एलिया मूसा के साथ उनको दिखाई दिया और वो यसु से बातें करते थे। पतरस ने यसु से कहा,
रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, बस हम 3 डेरे बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए।
क्योंकि वो जानता ना था कि क्या कहे, इसलिए कि वो बहुत डर गए थे। फिर एक बादल ने उन पर साया कर लिया और उस बादल में से आवाज आई के,
ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो।
और उन्होंने यकायक जो चारों तरफ नजर की तो यसु के सिवा और किसी को अपने साथ ना देखा। जब वो पहाड़ से उतरते थे तो उसने उनको हुक्म दिया कि जब तक इब्न आदम मुर्दों में से जी न उठे, जो कुछ तुमने देखा है किसी से न कहना। उन्होंने इस कलाम को याद रखा और वो आपस में बहस करते थे कि मुर्दों में से जी उठने के क्या मानी हैं। फिर उन्होंने उससे ये पूछा कि
फकीह क्यों कर कहते हैं कि एलिया का पहले आना जरूर है।
उसने उनसे कहा कि
एलिया अलबत्ता पहले आकर सब कुछ बहाल करेगा, मगर क्या वजह है कि इब्ने आदम के हक में लिखा है कि वो बहुत से दुख उठाएगा और हकीर किया जाएगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया तो आ चुका और जैसा उसके हक में लिखा है उन्होंने जो कुछ चाहा उसके साथ किया।
और जब वो शागिर्दों के पास आए तो देखा कि उनकी चारों तरफ बड़ी भीड़ है और फकीह उनसे बहस कर रहे हैं, और फिलफौर सारी भीड़ उसे देखकर नहायत हैरान हुई और उसकी तरफ दौड़कर उसे सलाम करने लगी। उसने उनसे पूछा,
तुम उनसे क्या बहस करते हो?
और भीड़ में से एक ने उसे जवाब दिया कि
ए उस्ताद, मैं अपने बेटे को जिसमें गूंगी रूह है तेरे पास लाया था, वो जहां उसे पकड़ती है पटक देती है और वो कफ भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है, और मैंने तेरे शागिर्दों से कहा था कि वो उसे निकाल दें, मगर वो ना निकाल सके।
उसने जवाब में उनसे कहा,
ऐ बेएतकाद कौम, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा, उसे मेरे पास लाओ।
बस वो उसे उसके पास लाए और जब उसने उसे देखा तो फिलफौर रूह ने उसे मरोड़ा और वो जमीन पर गिरा और कफ भर लाकर लौटने लगा। उसने उसके बाप से पूछा,
ये इसको कितनी मुद्दत से है?
उसने कहा,
बचपन ही से, और उसने अक्सर उसे आग और पानी में डाला ताकि उसे हलाक करे, लेकिन अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारी मदद कर।
यसु ने उससे कहा,
क्या अगर तू कर सकता है, जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है।
उस लड़के के बाप ने फिलफौर चिल्लाकर कहा,
मैं एतकाद रखता हूँ, तू मेरी बेएतकादी का इलाज कर।
जब यसु ने देखा कि लोग दौड़ दौड़ कर जमा हो रहे हैं तो उस नापाक रूह को झिड़क कर उससे कहा,
ए गुंगी बहरी रूह, मैं तुझे हुक्म करता हूँ, इसमें से निकला और इसमें फिर कभी दाखिल ना हो।
वो चिल्ला कर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और वो मुर्दा सा हो गया, ऐसा कि अक्सरों ने कहा कि
वो मर गया।
मगर यसु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वो उठ खड़ा हुआ। जब वो घर में आया तो उसके शागिर्दों ने तन्हाई में उससे पूछा कि
हम उसे क्यों ना निकाल सके।
उसने उनसे कहा कि
ये किस्म दुआ के सिवा किसी और तरह नहीं निकल सकती।
फिर वहां से रवाना हुए और गलील से होकर गुजरे और वो ना चाहता था कि कोई जाने, इसलिए कि वो अपने शागिर्दों को तालीम देता और उनसे कहता था कि
इब्ने आदम आदमियों के हवाले किया जाएगा और वो उसे कत्ल करेंगे और वो कत्ल होने के 3 दिन बाद जी उठेगा।
लेकिन वो इस बात को समझते ना थे और उससे पूछते हुए डरते थे। फिर वो कफरनहूम में आए और जब वो घर में था तो उसने उनसे पूछा कि
तुम राह में क्या बहस करते थे।
वो चुप रहे क्योंकि उन्होंने राह में एक दूसरे से ये बहस की थी कि बड़ा कौन है। फिर उसने बैठकर उन 12 को बुलाया और उनसे कहा कि
अगर कोई अव्वल होना चाहे तो वो सब में पिछला और सबका खादिम बने।
और एक बच्चे को लेकर उनके बीच में खड़ा किया, फिर उसे गोद में लेकर उनसे कहा,
जो कोई मेरे नाम पर ऐसे बच्चों में से एक को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो कोई मुझे कबूल करता है वो मुझे नहीं बल्कि उसे जिसने मुझे भेजा है कबूल करता है।
योहन्ना ने उससे कहा,
ऐ उस्ताद, हमने एक शख्स को तेरे नाम से बदरूहों को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे क्योंकि वो हमारी पैरवी नहीं करता था।
लेकिन यीशु ने कहा,
उसे मना ना करना क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से मौजजा दिखाए और मुझे जल्द बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे खिलाफ नहीं वो हमारी तरफ है। और जो कोई एक प्याला पानी तुमको इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर हरगिज ना खोएगा। और जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं किसी को ठोकर खिलाए, उसके लिए ये बेहतर है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो समुन्द्र में फेंक दिया जाए। और अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि दो हाथ होते जहन्नम के बीच उस आग में जाए जो कभी बुझने की नहीं, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। और अगर तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि दो पांव होते जहन्नम में डाला जाए जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। और अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर खुदा की बादशाही में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि दो आंखें होते जहन्नम में डाला जाए जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। क्योंकि हर शख्स आग से नमकीन किया जाएगा और हर एक कुर्बानी नमक से नमकीन की जाएगी। नमक अच्छा है लेकिन अगर नमक की नमकीनी जाती रहे तो उसको किस चीज से मजेदार करोगे। अपने में नमक रखो और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहो।
मरकस 10वां बाब। फिर वो वहां से उठकर यहूदिया की सरहदों में और यर्दन के पार आया और भीड़ उसके पास फिर जमा हो गई और वो अपने दस्तूर के मुआफिक फिर उनको तालीम देने लगा। और फरीसियों ने पास आकर उसे आजमाने के लिए उससे पूछा,
क्या ये रवा है कि मर्द अपनी बीवी को छोड़ दे?
उसने उनसे जवाब में कहा कि
मूसा ने तुमको क्या हुक्म दिया है?
उन्होंने कहा,
मूसा ने तो इजाजत दी है कि तलाकनामा लिख कर छोड़ दे।
मगर यीशु ने उनसे कहा कि
उसने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुम्हारे लिए ये हुक्म लिखा था, लेकिन खिलकत के शुरू से उसने उन्हें मर्द और औरत बनाया। इसलिए मर्द अपने बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो और उसकी बीवी दोनों एक जिस्म होंगे। बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म है। इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे।
और घर में शागिर्दों ने उससे इसकी बाबत फिर पूछा। उसने उनसे कहा,
जो कोई अपनी बीवी को छोड़ दे और दूसरी से ब्याह करे वो उस पहली के बरखिलाफ जिना करता है, और अगर औरत अपने शौहर को छोड़ दे और दूसरे से ब्याह करे तो जिना करती है।
फिर लोग बच्चों को उसके पास लाने लगे ताकि वो उनको छुए, मगर शागिर्दों ने उनको झिड़का। यीशु ये देखकर खफा हुआ और उनसे कहा,
बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसों ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल न करे वो उसमें हरगिज दाखिल ना होगा।
फिर उसने उन्हें अपनी गोद में लिया और उन पर हाथ रख कर उनको बरकत दी। और जब वो बाहर निकल कर राह में जा रहा था तो एक शख्स दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछने लगा के,
ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं?
यसु ने उससे कहा,
तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू हुक्मों को तो जानता है, खून ना कर, जिना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, फरेब देकर नुकसान ना कर, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर।
उसने उससे कहा,
ऐ उस्ताद, मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है।
यसु ने उस पर नजर की और उसे उस पर प्यार आया और उससे कहा,
एक बात की तुझ में कमी है, जा जो कुछ तेरा है बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले।
इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। फिर यसु ने चारों तरफ नजर करके अपने शागिर्दों से कहा,
दौलतमंदों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है।
शागिर्द उसकी बातों से हैरान हुए। यसु ने फिर जवाब में उनसे कहा,
बच्चों, जो लोग दौलत पर भरोसा रखते हैं उनके लिए खुदा की बादशाही में दाखिल होना क्या ही मुश्किल है। ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो।
वो निहायत ही हैरान होकर उससे कहने लगे,
फिर कौन नजात पा सकता है।
यसु ने उनकी तरफ नजर करके कहा,
ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से हो सकता है, क्योंकि खुदा से सब कुछ हो सकता है।
पतरस उससे कहने लगा,
देख, हमने तो सब कुछ छोड़ दिया और तेरे पीछे हो लिए हैं।
यसु ने कहा,
मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने घर या भाइयों या बहनों या माँ या बाप या बच्चों या खेतों को मेरी खातिर और इंजील की खातिर छोड़ दिया हो, और अब इस जमाने में 100 गुना ना पाए। घर और भाई और बहनें और माएं और बच्चे और खेत, मगर जुल्म के साथ, और आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी। लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल।
और वो यरूशलेम को जाते हुए रास्ते में थे और यसु उनके आगे आगे जा रहा था। वो हैरान होने लगे और जो पीछे पीछे चलते थे डरने लगे। बस वो फिर उन 12 को साथ लेकर उनको वो बातें बताने लगा जो उस पर आने वाली थीं।
देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और इब्ने आदम सरदार काहिनों और फकीहों के हवाले किया जाएगा, और वो उसके कत्ल का हुक्म देंगे और उसे गैर कौमों के हवाले करेंगे, और वो उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और कत्ल करेंगे, और 3 दिन के बाद वो जी उठेगा।
तब जब्दी के बेटों याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर उससे कहा,
ए उस्ताद, हम चाहते हैं कि जिस बात की हम तुझसे दरखास्त करें तू हमारे लिए करे।
उसने उनसे कहा,
तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं?
उन्होंने उससे कहा,
हमारे लिए ये कर के तेरे जलाल में हम में से एक तेरी दाहनी और एक तेरी बाईं तरफ बैठे।
यसु ने उनसे कहा,
तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो प्याला मैं पीने को हूं क्या तुम पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मैं लेने को हूं तुम ले सकते हो?
उन्होंने उससे कहा,
हमसे हो सकता है।
यसु ने उनसे कहा,
जो प्याला मैं पीने को हूं तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने को हूं तुम लोगे, लेकिन अपनी दाहनी या बाईं तरफ किसी को बिठा देना मेरा काम नहीं, मगर जिनके लिए तैयार किया गया उन्हीं के लिए है।
और जब उन 10 ने ये सुना तो याकूब और यूहन्ना से खफा होने लगे, मगर यसु ने उन्हें पास बुलाकर उनसे कहा,
तुम जानते हो कि जो गैर कौमों के सरदार समझे जाते हैं वो उन पर हुकूमत चलाते हैं और उनके अमीर उन पर इख्तियार जताते हैं, मगर तुम में ऐसा नहीं है, بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے، اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ سب کا غلام بنے، کیونکہ ابن آدم بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتیروں کے بدلے فدیے میں دے۔
اور وہ یریحو میں آئے، اور جب وہ اور اس کے شاگرد اور ایک بڑی بھیڑ یریحو سے نکلتی تھی، تو تیمائی کا بیٹا برتیمائی اندھا فقیر راہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، اور یہ سن کر کہ یسوع ناصری ہے، چلا چلا کر کہنے لگا،
اے ابن داؤد، اے یسوع، مجھ پر رحم کر۔
اور بہتوں نے اسے ڈانٹا کہ چپ رہے، مگر وہ اور بھی زیادہ چلایا کہ
اے ابن داؤد، مجھ پر رحم کر۔
یسوع نے کھڑے ہو کر کہا،
اسے بلاؤ۔
بس انہوں نے اس اندھے کو یہ کہہ کر بلایا کہ
خاطر جمع رکھ، اٹھ، وہ تجھے بلاتا ہے۔
وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا اور یسوع کے پاس آیا۔ یسوع نے اس سے کہا،
تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟
اندھے نے اس سے کہا،
اے ربونی، یہ کہ میں بینا ہو جاؤں۔
یسوع نے اس سے کہا،
جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا۔
وہ فل فور بینا ہو گیا اور راہ میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ مرکز 11 باب۔ جب وہ یروشلم کے نزدیک زیتون کے پہاڑ پر بیتفگے اور بیتنیہ کے پاس آئے، تو اس نے اپنے شاگردوں میں سے دو کو بھیجا اور ان سے کہا کہ
اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا تمہیں ملے گا، جس پر کوئی آدمی اب تک سوار نہیں ہوا، اسے کھول لاؤ، اور اگر کوئی تم سے کہے کہ تم یہ کیوں کرتے ہو، تو کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے، وہ فل فور اسے یہاں بھیج دے گا۔
پس وہ گئے اور بچے کو دروازے کے نزدیک باہر چوک میں بندھا ہوا پایا اور اسے کھولنے لگے، مگر جو لوگ وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے ان سے کہا،
یہ کیا کرتے ہو کہ گدھی کا بچہ کھولتے ہو؟
انہوں نے جیسا یسوع نے کہا تھا ویسا ہی ان سے کہہ دیا، اور انہوں نے ان کو جانے دیا۔ پس وہ گدھی کے بچے کو یسوع کے پاس لائے اور اپنے کپڑے اس پر ڈال دیے، اور وہ اس پر سوار ہو گیا، اور بہت لوگوں نے اپنے کپڑے راہ میں بچھا دیے، اوروں نے کھیتوں میں سے ڈالیاں کاٹ کر پھیلا دیں، اور جو اس کے آگے آگے جاتے اور پیچھے پیچھے چلے آتے تھے پکار پکار کر کہتے جاتے تھے،
ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداون کے نام سے آتا ہے، مبارک ہے ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی جو آ رہی ہے، عالم بالا پر ہوشانا۔
اور وہ یروشلم میں داخل ہو کر ہیکل میں آیا اور چاروں طرف سب چیزیں ملاحظہ کر کے ان 12 کے ساتھ بیتنیہ کو گیا، کیونکہ شام ہو گئی تھی۔ دوسرے دن جب وہ بیتنیہ سے نکلے تو اسے بھوک لگی، اور وہ دور سے انجیر کا ایک درخت جس میں پتے تھے دیکھ کر گیا کہ شاید اس میں کچھ پائے، مگر جب اس کے پاس پہنچا تو پتوں کے سوا کچھ نہ پایا، کیونکہ انجیر کا موسم نہ تھا۔ اس نے اس سے کہا،
آئندہ کوئی تجھ سے کبھی پھل نہ کھائے۔
اور اس کے شاگردوں نے سنا۔ پھر وہ یروشلم میں آئے اور یسوع ہیکل میں داخل ہو کر ان کو جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے باہر نکالنے لگا، اور صرافوں کے تختوں اور کبوتر فروشوں کی چوکیوں کو الٹ دیا، اور اس نے کسی کو ہیکل میں سے ہو کر کوئی برتن لے جانے نہ دیا، اور اپنی تعلیم میں ان سے کہا،
کیا یہ نہیں لکھا ہے کہ میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا، مگر تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے۔
اور سردار کاہن اور فقیہ یہ سن کر اس کے ہلاک کرنے کا موقع ڈھونڈنے لگے، کیونکہ اس سے ڈرتے تھے، اس لیے کہ سب لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے، اور ہر روز شام کو وہ شہر سے باہر جایا کرتا تھا۔ پھر صبح کو جب وہ ادھر سے گزرے تو اس انجیر کے درخت کو جڑ تک سوکھا ہوا دیکھا۔ پطرس کو وہ بات یاد آئی اور اس سے کہنے لگا،
اے ربی، دیکھ یہ انجیر کا درخت جس پر تو نے لعنت کی تھی، سوکھ گیا ہے۔
یسوع نے جواب میں ان سے کہا،
خدا پر ایمان رکھو، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ، اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا، تو اس کے لیے وہی ہوگا۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا، اور وہ تم کو مل جائے گا۔ اور جب کبھی تم کھڑے ہوئے دعا کرتے ہو، اگر تمہیں کسی سے کچھ شکایت ہو تو اسے معاف کرو، تاکہ تمہارا باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ معاف کرے، اور اگر تم معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ بھی معاف نہ کرے گا۔
وہ پھر یروشلم میں آئے، اور جب وہ ہیکل میں پھر رہا تھا تو سردار کاہن اور فقیہ اور بزرگ اس کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے،
تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے، یا کس نے تجھے یہ اختیار دیا کہ ان کاموں کو کرے؟
یسوع نے ان سے کہا،
میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، تم جواب دو تو میں تم کو بتاؤں گا کہ ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہوں۔ یوحنا کا بپتسمہ آسمان کی طرف سے تھا یا انسان کی طرف سے؟ مجھے جواب دو۔
وہ آپس میں کہنے لگے کہ
اگر ہم کہیں آسمان کی طرف سے، تو وہ کہے گا پھر تم نے کیوں اس کا یقین نہ کیا، اور اگر کہیں انسان کی طرف سے، تو لوگوں کا ڈر تھا اس لیے کہ سب لوگ واقعی یوحنا کو نبی جانتے تھے۔
بس انہوں نے جواب میں یسوع سے کہا،
ہم نہیں جانتے۔
یسوع نے ان سے کہا،
میں بھی تم کو نہیں بتاتا کہ ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہوں۔
مرکز 12 باب۔ پھر وہ ان سے تمثیلوں میں باتیں کرنے لگا کہ
ایک شخص نے تاکستان لگایا اور اس کی چاروں طرف احاطہ گھیرا، اور حوض کھودا اور برج بنایا، اور اسے باغبانوں کو ٹھیکے پر دے کر پردیش چلا گیا۔ پھر پھل کے موسم میں اس نے ایک نوکر کو باغبانوں کے پاس بھیجا تاکہ باغبانوں سے تاکستان کے پھلوں کا حصہ لے لے، لیکن انہوں نے اسے پکڑ کر پیٹا اور خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ اس نے پھر ایک اور نوکر کو ان کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے اس کا سر پھوڑ دیا اور بے عزت کیا۔ پھر اس نے ایک اور کو بھیجا، انہوں نے اسے قتل کیا۔ پھر اور بہتیروں کو بھیجا، انہوں نے ان میں سے بعض کو پیٹا اور بعض کو قتل کیا۔ اب ایک باقی تھا جو اس کا پیارا بیٹا تھا۔ اس نے آخر اسے ان کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں گے، لیکن ان باغبانوں نے آپس میں کہا، یہی وارث ہے، آؤ اسے قتل کر ڈالیں، میراث ہماری ہو جائے گی۔ بس انہوں نے اسے پکڑ کر قتل کیا اور تاکستان کے باہر پھینک دیا۔ اب تاکستان کا مالک کیا کرے گا؟ وہ آئے گا اور ان باغبانوں کو ہلاک کر کے تاکستان اوروں کو دے دے گا۔ کیا تم نے یہ نوشتہ بھی نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا؟ یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے۔
اس پر وہ اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگے، مگر لوگوں سے ڈرے، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اس نے یہ تمثیل انہی پر کہی۔ پس وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر انہوں نے بعض فریسیوں اور ہیرودیوں کو اس کے پاس بھیجا تاکہ باتوں میں اس کو پھنسائیں، اور انہوں نے آ کر اس سے کہا،
اے استاد، ہم جانتے ہیں کہ تو سچا ہے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ تو کسی آدمی کا طرفدار نہیں بلکہ سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے۔ پس قیصر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں؟ ہم دیں یا نہ دیں؟
اس نے ان کی ریاکاری معلوم کر کے ان سے کہا،
तुम मुझे क्यों आजमाते हो? मेरे पास एक दिनार लाओ कि मैं देखूं।
वो ले आए। उसने उनसे कहा,
ये सूरत और नाम किसका है?
उन्होंने उससे कहा,
कैसर का।
यीशु ने उनसे कहा,
जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को अदा करो।
वो उस पर बड़ा ताजुब करने लगे। फिर सदूकियों ने, जो कहते हैं कि क़यामत नहीं होगी, उसके पास आकर उससे ये सवाल किया कि
ऐ उस्ताद, हमारे लिए मूसा ने लिखा है कि अगर किसी का भाई बे औलाद मर जाए और उसकी बीवी रह जाए, तो उसका भाई उसकी बीवी को ले ले, ताकि अपने भाई के लिए नस्ल पैदा करे। सात भाई थे। पहले ने बीवी की और बे औलाद मर गया। दूसरे ने उसे लिया और बे औलाद मर गया। और इसी तरह तीसरे ने, यहां तक कि सातों बे औलाद मर गए। सबके बाद वो औरत भी मर गई। कयामत में ये उनमें से किसकी बीवी होगी, क्योंकि वो सातों की बीवी बनी थी?
यीशु ने उनसे कहा,
क्या तुम इस सबब से गुमराह नहीं हो कि ना किताब मुकद्दस को जानते हो ना खुदा की कुदरत को? क्योंकि जब लोग मुर्दों में से जी उठेंगे तो उनमें ब्याह शादी ना होगी, बल्कि आसमान पर फरिश्तों की मानिंद होंगे। मगर इस बारे में कि मुर्दे जी उठते हैं, क्या तुमने मूसा की किताब में झाड़ी के जिक्र में नहीं पढ़ा कि खुदा ने उससे कहा कि मैं अब्राहम का खुदा और इजहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ? वो तो मुर्दों का खुदा नहीं बल्कि जिंदों का है। बस तुम बड़े गुमराह हो।
और फकीहों में से एक ने उनको बहस करते सुनकर जान लिया कि उसने उनको खूब जवाब दिया है। वो पास आया और उससे पूछा कि
सब हुक्मों में अव्वल कौन सा है?
यीशु ने जवाब दिया कि
अव्वल ये है, ऐ इसराइल सुन, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। दूसरा ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं।
फकीह ने उससे कहा,
ऐ उस्ताद, बहुत खूब, तूने सच कहा कि वो एक ही है और उसके सिवा और कोई नहीं, और उससे सारे दिल और सारी अक्ल और सारी ताकत से मोहब्बत रखना, और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रखना, सब सोख्तनी कुर्बानियों और ज़बीहों से बढ़कर है।
जब यीशु ने देखा कि उसने दानाई से जवाब दिया, तो उससे कहा,
तू खुदा की बादशाही से दूर नहीं।
और फिर किसी ने उससे सवाल करने की जुर्रत ना की। फिर यीशु ने हैकल में तालीम देते वक्त ये कहा कि
फकीह क्यों कर कहते हैं कि मसीह दाऊद का बेटा है? दाऊद ने खुद रूहुल कुद्स की हिदायत से कहा है कि खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा, मेरी दाहिनी तरफ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव के नीचे की चौकी ना कर दूं। दाऊद तो आप उसे खुदावंद कहता है, फिर वो उसका बेटा कहां से ठहरा?
और आम लोग खुशी से उसकी सुनते थे। फिर उसने अपनी तालीम में कहा कि
फकीहों से खबरदार रहो, जो लंबे लंबे जामे पहनकर फिरना और बाजारों में सलाम और इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियां और ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी चाहते हैं, और वो बेवाओं के घरों को दबा बैठते हैं और दिखावे के लिए नमाज को तूल देते हैं, इन्हीं को ज्यादा सजा मिलेगी।
फिर वो हैकल के खजाने के सामने बैठा देख रहा था कि लोग हैकल के खजाने में पैसे किस तरह डालते हैं, और बहुतेरे दौलतमंद बहुत कुछ डाल रहे थे। इतने में एक कंगाल बेवा ने आकर दो दमड़ियां यानी एक ढेला डाला। उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा,
मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो हैकल के खजाने में डाल रहे हैं, इस कंगाल बेवा ने उन सबसे ज्यादा डाला, क्योंकि सबों ने अपने माल की बहुतात से डाला, मगर इसने अपनी नादारी की हालत में जो कुछ इसका था یعنی اپنی ساری روزی ڈال دی۔
مرکز 13واں باب۔ جب وہ ہیکل سے باہر جا رہا تھا تو اس کے شاگردوں میں سے ایک نے اس سے کہا،
اے استاد، دیکھ یہ کیسے کیسے پتھر اور کیسی کیسی عمارتیں ہیں۔
یسو نے اس سے کہا،
تو ان بڑی بڑی عمارتوں کو دیکھتا ہے، یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے۔
جب وہ زیتون کے پہاڑ پر ہیکل کے سامنے بیٹھا تھا تو پترس اور یعقوب اور یوحنا اور اندریاس نے تنہائی میں اس سے پوچھا،
ہمیں بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی، اور جب یہ سب باتیں پوری ہونے کو ہوں اس وقت کا کیا نشان ہے؟
یسو نے ان سے کہنا شروع کیا کہ
خبردار، کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے۔ بہتےرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ وہ میں ہی ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اور جب تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہیں سنو تو گھبرا نہ جانا، ان کا واقع ہونا ضرور ہے لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، جگہ جگہ بہنچال آئیں گے اور کال پڑیں گے۔ یہ باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی، لیکن تم خبردار رہو، کیونکہ لوگ تم کو عدالتوں کے حوالے کریں گے اور تم عبادت خانوں میں پیٹے جاؤ گے، اور حاکموں اور بادشاہوں کے سامنے میری خاطر حاضر کیے جاؤ گے تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ اور ضرور ہے کہ پہلے سب قوموں میں انجیل کی منادی کی جائے، لیکن جب تمہیں لے جا کر حوالے کریں تو پہلے سے فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کہیں، بلکہ جو کچھ اس گھڑی تمہیں بتایا جائے وہی کہنا، کیونکہ کہنے والے تم نہیں ہو بلکہ روح القدس ہے، اور بھائی کو بھائی اور بیٹے کو باپ قتل کے لیے حوالے کرے گا، اور بیٹے ماں باپ کے برخلاف کھڑے ہو کر انہیں مروا ڈالیں گے، اور میرے نام کے سبب سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ پس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو اس جگہ کھڑی ہوئی دیکھو جہاں اس کا کھڑا ہونا روا نہیں، اس وقت جو یہودیہ میں ہو وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں، جو کوٹھے پر ہو وہ اپنے گھر سے کچھ لینے کو نہ نیچے اترے نہ اندر جائے، اور جو کھیت میں ہو وہ اپنا کپڑا لینے کو پیچھے نہ لوٹے۔ مگر ان پر افسوس جو ان دنوں میں حاملہ ہوں اور جو دودھ پلاتی ہوں، اور دعا کرو کہ یہ جاڑوں میں نہ ہو، کیونکہ وہ دن ایسی مصیبت کے ہوں گے کہ خلقت کے شروع سے جسے خدا نے خلق کیا نہ اب تک ہوئی ہے نہ کبھی ہوگی۔ اور اگر خداوند ان دنوں کو نہ گھٹاتا تو کوئی بشر نہ بچتا، مگر ان برگزیدوں کی خاطر جن کو اس نے چنا ہے ان دنوں کو گھٹایا۔ اور اس وقت اگر کوئی تم سے کہے کہ دیکھو مسیح یہاں یا دیکھو وہاں ہے تو یقین نہ کرنا، کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور نشان اور عجیب کام دکھائیں گے تاکہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر دیں۔ لیکن تم خبردار رہو، دیکھو میں نے تم سے سب کچھ پہلے ہی کہہ دیا ہے، مگر ان دنوں میں اس مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا، اور آسمان سے ستارے گرنے لگیں گے، اور جو قوتیں آسمان میں ہیں وہ ہلائی جائیں گی، اور اس وقت لوگ ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ بادلوں میں آتے دیکھیں گے۔ اس وقت وہ فرشتوں کو بھیج کر اپنے برگزیدوں کو زمین کی انتہا سے آسمان کی انتہا تک چاروں طرف سے جمع کرے گا۔ اب انجیر کے درخت سے ایک تمثیل سیکھو، جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی اور پتے نکلتے ہیں تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے۔ اسی طرح جب تم ان باتوں کو ہوتے دیکھو تو جان لو کہ وہ نزدیک بلکہ دروازے پر ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی۔ आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें ना टलेंगी। लेकिन उस दिन या उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, मगर बाप। खबरदार, जागते और दुआ करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो वक्त कब आएगा। ये उस आदमी का सा हाल है जो परदेश गया और उसने घर से रुखसत होते वक्त अपने नौकरों को इख्तियार दिया, यानी हर एक को उसका काम बता दिया और दरबान को हुक्म दिया कि जागता रहे। बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का मालिक कब आएगा, शाम को या आधी रात को, या मूर्ख के बांग देते वक्त, या सुबह को। ऐसा ना हो कि अचानक आकर वो तुमको सोते पाए। और जो कुछ मैं तुमसे कहता हूं, वही सबसे कहता हूं कि जागते रहो।
मरकज 14वां बाब। दो दिन के बाद फसह और ईद फतीर होने वाली थी और सरदार काहिन और फकीह मौका ढूंढ रहे थे कि उसे क्यों कर फरेब से पकड़कर कत्ल करें, क्योंकि कहते थे कि
ईद में नहीं, ऐसा ना हो के लोगों में बलवा हो जाए।
जब वो बैतनिया में शिमाउन कोहड़ी के घर में खाना खाने बैठा तो एक औरत जटामासी का बेश कीमत खालिस इत्र संगे मरमर के इत्रदान में लाई और इत्रदान तोड़कर इत्र को उसके सर पर डाला। मगर बाज अपने दिल में खफा होकर कहने लगे,
ये इत्र किस लिए जाया किया गया, क्योंकि ये इत्र 300 दिनार से ज्यादा को बिक कर गरीबों को दिया जा सकता था।
और वो उसे मलामत करने लगे। यसु ने कहा,
उसे छोड़ दो, उसे क्यों दिक करते हो, उसने मेरे साथ भलाई की है, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास हैं, जब चाहो उनके साथ नेकी कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे पास हमेशा न रहूंगा। जो कुछ वो कर सकी उसने किया, उसने दफन के लिए मेरे बदन पर पहले ही से इत्र मला। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तमाम दुनिया में जहां कहीं इंजील की मुनादी की जाएगी, ये भी जो इसने किया इसकी यादगारी में बयान किया जाएगा।
फिर यहूदा इस्करियोती, जो उन 12 में से था, सरदार काहिनों के पास चला गया ताकि उसे उनके हवाले कर दे। वो ये सुनकर खुश हुए और उसको रुपए देने का इकरार किया और वो मौका ढूंढने लगा कि किसी तरह काबू पाकर उसे पकड़वा दे। ईद फतीर के पहले दिन, यानी जिस रोज फसह को ज़बह किया करते थे, उसके शागिर्दों ने उससे कहा,
तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें।
उसने अपने शागिर्दों में से दो को भेजा और उनसे कहा,
शहर में जाओ, एक शख्स पानी का घड़ा लिए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना और जहां वो दाखिल हो उस घर के मालिक से कहना, उस्ताद कहता है कि मेरा मेहमान खाना जहां मैं अपने शागिर्दों के साथ फसह खाऊं कहां है, वो आप तुमको एक बड़ा बाला खाना और रास्ता और तैयार दिखाएगा, वहीं हमारे लिए तैयारी करना।
पस शागिर्द चले गए और शहर में आकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह को तैयार किया। जब शाम हुई तो वो उन 12 के साथ आया और जब वो बैठे खा रहे थे तो यसु ने कहा,
मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक जो मेरे साथ खाता है मुझे पकड़वाएगा।
वो दिलगीर होने और एक एक करके उससे कहने लगे,
क्या मैं हूं।
उसने उनसे कहा कि
वो 12 में से एक है जो मेरे साथ तबाक में हाथ डालता है, क्योंकि इब्ने आदम तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता ही है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीले से इब्ने आदम पकड़वाया जाता है, अगर वो आदमी पैदा ना होता तो उसके लिए अच्छा होता।
और वो खा ही रहे थे कि उसने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और उनको दी और कहा,
लो ये मेरा बदन है।
फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और उनको दिया, और उन सबों ने उसमें से पिया, और उसने उनसे कहा,
ये मेरा वो अहद का खून है जो बहुतेरों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अंगूर का शीरा फिर कभी ना पीऊंगा उस दिन तक कि खुदा की बादशाही में नया ना पीऊं।
फिर गीत गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए और यीशु ने उनसे कहा,
तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें प्रागंधा हो जाएंगी, मगर मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा।
पतरस ने उससे कहा,
गो सब ठोकर खाएं, लेकिन मैं ना खाऊंगा।
यीशु ने उससे कहा,
मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज इसी रात मुर्ख के दो बार बांग देने से पहले तीन बार मेरा इनकार करेगा।
लेकिन उसने बहुत जोर देकर कहा,
अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो भी तेरा इनकार हरगिज ना करूंगा।
इसी तरह और सब ने भी कहा। फिर वो एक जगह आए जिसका नाम गतसिमनी था, और उसने अपने शागिर्दों से कहा,
यहाँ बैठे रहो जब तक मैं दुआ करूं।
और पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ लेकर निहायत हैरान और बेकरार होने लगा, और उनसे कहा,
मेरी जान निहायत गमगीन है, यहाँ तक कि मरने की नौबत पहुँच गई है, तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो।
और वो थोड़ा आगे बढ़ा और जमीन पर गिरकर दुआ करने लगा कि अगर हो सके तो ये घड़ी मुझ पर से टल जाए, और कहा,
ए अब्बा, ए बाप, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस प्याले को मेरे पास से हटा ले, तो भी जो मैं चाहता हूँ वो नहीं बल्कि जो तू चाहता है वही हो।
फिर वो आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा,
ए शिमाउन, तू सोता है, क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है।
वो फिर चला गया और वही बात कहकर दुआ की, और फिर आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थीं और वो ना जानते थे कि उसे क्या जवाब दें। फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा,
अब सोते रहो और आराम करो, बस वक्त आ पहुंचा है। देखो, इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाले किया जाता है, उठो चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला नजदीक आ पहुंचा है।
वो ये कह ही रहा था कि फिलिप और यहूदा, जो उन बारह में से था, और उसके साथ एक भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए सरदार काहिनों और फकीहों और बुजुर्गों की तरफ से आ पहुंची, और उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें ये निशान दिया था कि
जिसका मैं बोसा लूं वही है, उसे पकड़कर हिफाजत से ले जाना।
वो आकर फिलिप और उसके पास गया और कहा,
ऐ रबी,
और उसके बोसे लिए। उन्होंने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया। उनमें से जो पास खड़े थे, एक ने तलवार खींचकर सरदार काहिन के नौकर पर चलाई और उसका कान उड़ा दिया। यीशु ने उनसे कहा,
क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू की तरह पकड़ने निकले हो? मैं हर रोज तुम्हारे पास हैकल में तालीम देता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, लेकिन ये इसलिए हुआ है कि नविश्ते पूरे हैं।
इस पर सब शागिर्द उसे छोड़कर भाग गए, मगर एक जवान अपने नंगे बदन पर महीन चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया। उसे लोगों ने पकड़ा, मगर वो चादर छोड़कर नंगा भाग गया। फिर वो यीशु को सरदार काहिन के पास ले गए, और सब सरदार काहिन और बुजुर्ग और फकीह उसके हाँ जमा हो गए, और पतरस फासले पर उसके पीछे पीछे सरदार काहिन के दीवान खाने के अंदर तक गया और प्यादों के साथ बैठकर आग तापने लगा। और सरदार काहिन और सब सदर अदालत वाले यस्सु को मार डालने के लिए उसके खिलाफ गवाही ढूंढने लगे मगर ना पाई, क्योंकि बहुतेरों ने उस पर झूठी गवाहियां तो दीं लेकिन उनकी गवाहियां मुत्तफिक ना थीं। फिर बाज ने उठकर उस पर ये झूठी गवाही दी के
हमने उसे ये कहते सुना है कि मैं इस मकदस को जो हाथ से बना है ढाऊंगा और तीन दिन में दूसरा बनाऊंगा जो हाथ से ना बनाओ।
लेकिन इस पर भी उनकी गवाही मुत्तफिक ना निकली। फिर सरदार काहिन ने बीच में खड़े होकर यस्सु से पूछा के
तू कुछ जवाब नहीं देता, कि तेरे खिलाफ क्या गवाही देते हैं?
मगर वो खामोश ही रहा और कुछ जवाब न दिया। सरदार काहिन ने उससे फिर सवाल किया और कहा,
क्या तू सतूदा का बेटा मसीह है?
यस्सु ने कहा,
हाँ मैं हूँ, और तुम इब्ने आदम को कादरे मुतलक की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों के साथ आते देखोगे।
सरदार काहिन ने अपने कपड़े फाड़कर कहा,
अब हमें गवाहों की क्या हाजत रही? तुमने ये कुफर सुना, तुम्हारी क्या राय है?
उन सब ने फतवा दिया कि वो कत्ल के लायक है। तब बाज उस पर फूंकने और उसका मुंह ढांपने और उसके मुक्के मारने और उससे कहने लगे, और कियादों ने उसे तमाचे मार मार कर अपने कब्जे में लिया। जब पतरस नीचे सहन में था तो सरदार काहिन की लौंडियों में से एक वहां आई और पतरस को आग तापते देखकर उस पर नजर की और कहने लगी,
तू भी उस नासरी यस्सु के साथ था?
उसने इनकार किया और कहा के
मैं तो ना जानता और ना समझता हूँ कि तू क्या कहती है।
फिर वो बाहर डेवड़ी में गया और मुर्ग ने बांग दी। वो लौंडी उसे देखकर उनसे जो पास खड़े थे फिर कहने लगी,
ये उनमें से है।
मगर उसने फिर इनकार किया और थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे पतरस से फिर कहा,
बेशक तू उनमें से है क्योंकि तू गलीली भी है।
मगर वो लानत करने और कसम खाने लगा के
मैं इस आदमी को जिसका तुम जिक्र करते हो नहीं जानता।
और फिल्फ और मुर्ग ने दूसरी बार बांग दी। पतरस को वो बात जो यस्सु ने उससे कही थी याद आई के
मुर्ग के दो बार बांग देने से पहले तू तीन बार मेरा इनकार करेगा,
और उस पर गौर करके वो रो पड़ा। मरकस 15वां बाब। और फिल्फ और सुबह होते ही सरदार काहिनों ने बुजुर्गों और फकीहों और सब सदर अदालत वालों समेत सलाह करके यस्सु को बंधवाया और ले जाकर पिलातुस के हवाले किया। और पिलातुस ने उससे पूछा,
क्या तू यहूदियों का बादशाह है?
उसने जवाब में उससे कहा,
तू खुद कहता है।
और सरदार काहिन उस पर बहुत बातों का इल्ज़ाम लगाते रहे। पिलातुस ने उससे दोबारा सवाल करके ये कहा,
तू कुछ जवाब नहीं देता, देखिए तुझ पर कितनी बातों का इल्ज़ाम लगाते हैं।
यस्सु ने फिर भी कुछ जवाब न दिया, यहाँ तक के पिलातुस ने ताजुब किया। और वो ईद पर एक कैदी को जिसके लिए लोग अर्ज करते थे उनकी खातिर छोड़ दिया करता था, और बरअबा नाम एक आदमी उन बागियों के साथ कैद में पड़ा था जिन्होंने बगावत में खून किया था। और भीड़ ऊपर चढ़कर उससे अर्ज करने लगी कि जो तेरा दस्तूर है वो हमारे लिए कर। पिलातुस ने उन्हें ये जवाब दिया,
क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी खातिर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूं?
क्योंकि उसे मालूम था कि सरदार काहिनों ने इसको हसद से मेरे हवाले किया है। मगर सरदार काहिनों ने भीड़ को उभारा ताकि पिलातुस उनकी खातिर बरअबा ही को छोड़ दे। पिलातुस ने दोबारा उनसे कहा,
फिर जिसे तुम यहूदियों का बादशाह कहते हो उससे मैं क्या करूं?
वो फिर चिल्लाए के और पिलातुस ने उनसे कहा,
क्यों उसने क्या बुराई की?
वो और भी चिल्लाए के पिलातुस ने लोगों को खुश करने के इरादे से उनके लिए बरअबा ही को छोड़ दिया। اور یسو کو کوڑے لگوا کر حوالے کیا کہ مصلوب ہو، اور سپاہی اس کو اس صحن میں لے گئے جو پریتوریوم کہلاتا ہے، اور ساری پلٹن کو بلا لائے، اور انہوں نے اسے ارغوانی چوغا پہنایا اور کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا، اور اسے سلام کرنے لگے کہ
اے یہودیوں کے بادشاہ آزاد،
اور وہ اس کے سر پر سرکنڈا مارتے اور اس پر تھوکتے اور گھٹنے ٹیک ٹیک کر اسے سجدہ کرتے رہے، اور جب اسے ٹھٹھوں میں اڑا چکے تو اس پر سے ارغوانی چوغا اتار کر اسی کے کپڑے اسے پہنائے، پھر اسے مصلوب کرنے کو باہر لے گئے، اور شمعون نام ایک قرینی آدمی سکندر اور روفس کا باپ دیہات سے آتے ہوئے ادھر سے گزرا، انہوں نے اسے بیگار میں پکڑا کہ اس کی صلیب اٹھائے، اور وہ اسے مقام گلگتہ پر لائے جس کا ترجمہ کھوپڑی کی جگہ ہے، اور مر ملی ہوئی مہ اسے دینے لگے مگر اس نے نہ لی، اور انہوں نے اسے مصلوب کیا اور اس کے کپڑوں پر پورا ڈال کر کہ کس کو کیا ملے انہیں بانٹ لیا، اور پہر دن چڑھا تھا جب انہوں نے اس کو مصلوب کیا اور اس کا الزام لکھ کر اس کے اوپر لگا دیا گیا کہ یہودیوں کا بادشاہ، اور انہوں نے اس کے ساتھ دو ڈاکو ایک اس کی دہنی اور ایک اس کی بائیں طرف مصلوب کیے۔ تب اس مضمون کا وہ نوشتہ کہ
وہ بدکاروں میں گنا گیا پورا ہوا،
اور راہ چلنے والے سر ہلا ہلا کر اس پر لان تان کرتے اور کہتے تھے کہ
واہ، مقدس کے ڈھانے والے اور دین دن میں بنانے والے، صلیب پر سے اتر کر اپنے تے ہی بچا۔
اسی طرح سردار کاہن بھی فقیہوں کے ساتھ مل کر آپس میں چھٹے سے کہتے تھے،
اس نے اوروں کو بچایا، اپنے تئی نہیں بچا سکتا، اسرائیل کا بادشاہ مسیح اب صلیب پر سے اتر آئے تاکہ ہم دیکھ کر ایمان لائیں۔
اور جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے وہ اس پر لان تان کرتے تھے۔ جب دوپہر ہوئی تو تمام ملک میں اندھیرا چھا گیا اور تیسرے پہر تک رہا، اور تیسرے پہر کو یسوع بڑی آواز سے چلایا کہ
الہی الہی لما شبقتنی،
جس کا ترجمہ ہے
اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔
جو پاس کھڑے تھے ان میں سے بعض نے یہ سن کر کہا
دیکھو وہ ایلیا کو بلاتا ہے،
اور ایک نے دوڑ کر سپنج کو سرکے میں ڈبویا اور سرکنڈے پر رکھ کر اسے چسایا اور کہا
ٹھہر جاؤ، دیکھیں تو ایلیا اسے اتارنے آتا ہے یا نہیں۔
پھر یسو نے بڑی آواز سے چلا کر دم دے دیا، اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا، اور جو صوبے دار اس کے سامنے کھڑا تھا اس نے اسے یوں دم دیتے ہوئے دیکھ کر کہا
بے شک یہ آدمی خدا کا بیٹا تھا۔
اور کئی عورتیں دور سے دیکھ رہی تھیں، ان میں مریم مگدلینی اور چھوٹے یعقوب اور یوسف کی ماں مریم اور سلومی تھی۔ جب وہ گلیل میں تھا یہ اس کے پیچھے ہو لیتی اور اس کی خدمت کرتی تھیں، اور بھی بہت سی عورتیں تھیں جو اس کے ساتھ یروشلم میں آئی تھیں۔ جب شام ہو گئی تو اس لیے کہ تیاری کا دن تھا جو سبت سے ایک دن پہلے ہوتا ہے، ارمتیا کا رہنے والا یوسف آیا جو عزت دار مشیر اور خود بھی خدا کی بادشاہی کا منتظر تھا، اور اس نے جورت سے پلاتس کے پاس جا کر یسو کی لاش مانگی، اور پلاتس نے تعجب کیا کہ وہ ایسا جلد مر گیا، اور صوبے دار کو بلا کر اس سے پوچھا کہ اس کو مرے ہوئے دیر ہو گئی۔ جب صوبے دار سے حال معلوم کر لیا تو لاش یوسف کو دلا دی، اس نے ایک مہین چادر مول لی اور لاش کو اتار کر اس چادر میں کفنایا، اور ایک قبر کے اندر جو چٹان میں کھودی گئی تھی رکھا، اور قبر کے منہ پر ایک پتھر لڑکا دیا، اور مریم مگدلینی اور یوسف کی ماں مریم دیکھ رہی تھیں کہ وہ کہاں رکھا گیا ہے۔ مرکز 16 باب۔ جب سبت کا دن گزر گیا تو مریم مگدلینی اور یعقوب کی ماں مریم اور سلومی نے خوشبودار چیزیں مول لیں تاکہ آ کر اس پر ملیں۔ وہ ہفتے کے پہلے دن بہت سویرے جب سورج نکلا ہی تھا قبر پر آئیں اور آپس میں کہتی تھیں کہ
ہمارے لیے پتھر کو قبر کے منہ پر سے کون لڑکائے گا۔
جب انہوں نے نگاہ کی تو دیکھا کہ پتھر لڑکا ہوا ہے، کیونکہ وہ بہت ہی بڑا تھا، اور قبر کے اندر جا کر انہوں نے ایک جوان کو سفید جامع پہنے ہوئے دانی طرف بیٹھے دیکھا اور نہایت حیران ہوئی۔ اس نے ان سے کہا،
ایسی حیران نہ ہو، تم یسوع ناصری کو جو مصلوب ہوا تھا ڈھونڈتی ہو، وہ جی اٹھا ہے، وہ یہاں نہیں ہے۔ دیکھو، یہ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے اسے رکھا تھا، لیکن تم جا کر اس کے شاگردوں اور پترس سے کہو کہ وہ تم سے پہلے گلیل کو جائے گا، تم وہیں اسے دیکھو گے جیسا اس نے تم سے کہا۔
اور وہ نکل کر قبر سے بھاگیں، کیونکہ لرزش اور ہیبت ان پر غالب آ گئی تھی، اور انہوں نے کسی سے کچھ نہ کہا کیونکہ وہ ڈرتی تھیں۔ ہفتے کے پہلے روز جب وہ سویرے جی اٹھا تو پہلے مریم مگدلینی کو، جس میں سے اس نے 7 بدروہیں نکالی تھیں، دکھائی دیا۔ اس نے جا کر اس کے ساتھیوں کو جو ماتم کرتے اور روتے تھے خبر دی، اور انہوں نے یہ سن کر کہ وہ جیتا ہے اور اس نے اسے دیکھا ہے، یقین نہ کیا۔ اس کے بعد وہ دوسری صورت میں ان میں سے 2 کو، جب وہ دیہات کی طرف پیدل جا رہے تھے، دکھائی دیا۔ انہوں نے بھی جا کر باقی لوگوں کو خبر دی، مگر انہوں نے ان کا بھی یقین نہ کیا۔ پھر وہ ان 11 کو بھی جب کھانا کھانے بیٹھے تھے دکھائی دیا، اور اس نے ان کی بے اعتقادی اور سخت دلی پر ان کو ملامت کی، کیونکہ جنہوں نے اس کے جی اٹھنے کے بعد اسے دیکھا تھا انہوں نے ان کا یقین نہ کیا تھا۔ اور اس نے ان سے کہا کہ
تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا، اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروؤں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پیئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے۔
غرض خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا کی داہنی طرف بیٹھ گیا۔ پھر انہوں نے نکل کر ہر جگہ منادی کی، اور خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا، اور کلام کو ان معجزوں کے وسیلے سے جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے ثابت کرتا رہا۔ آمین۔